نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير اسلام اے ٹو زی. اس میں سے الحمدللہ ہم عبادات کا ٹاپک کر رہے ہیں اور عبادات کے ٹاپک میں بھی ہم نے نماز کو شروع کیا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ واقعی نماز جنت کی کنجی ہے اور اگر چابی کا ایک دندانہ بھی مس ہو جائے تو چابی کام نہیں کرتی. ابھی تک ہم نے نماز کی جو مختلف چیزیں پڑھی ہیں اس کے باوجود کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے, ہم اس کو اپنی نظر میں رکھیں. میں اتنی بات کرتے ہوئے ذرا سا آپ کا ذہن اس چیز پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ اتنا کچھ نماز کے بارے میں سننے کے بعد کیا آپ کو نماز کی حکمت سمجھ آئی؟ تھوڑی سی حکمت لیجئے, پھر اس کے بعد باقی چیزیں لکھیں. آپ دیکھیے کہ انسان کمزور ہے اور جلدی سے پریشان بھی ہو جاتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے, اور جب دکھی یا پریشان ہو تو اس کا دل کرتا ہے مجھے کوئی سہارا دے, رائٹ. بچے کو دیکھیے سارا دن ماما ماما یہ کیا آوازیں ہیں, امی, یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے نا. پھر بڑے ہو کر مائیں آوازیں دیتی رہتی ہیں اور بچے آگے سے جواب کوئی نہیں دیتے. ماں تو بچے کی پہلی بات پہ چل پڑتی ہے اور بچہ چاہے ماں کی بات سن کر جواب بھی نہ دے سکے. بالکل اسی طرح سے نماز اللہ کے ساتھ دکھ سکھ کا ذریعہ ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ خوش نہ ہوں یا دکھی نہ ہوں, کوئی آپ کو ہرٹ نہ کرے یا آپ نہ ہو جائیں. کبھی نہ بھی کوئی کرے نہ پھر بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہرٹ ہونے کا. تو ایسے وقت میں نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنتی ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے نا تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں. آپ سوچیں گے کہ ہم نے ایک ویک میں عقیدہ پڑھ لیا, اب ہم اس ویک میں عبادات کر رہے ہیں, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. جو عقیدہ پڑھا ہے نا اس کا تعلق ہے آپ کی عبادات سے. جیسے جڑوں میں سے نمکیات اور جڑوں میں سے پانی جاتا ہے تو پودے کا تنا بنتا ہے نا, ٹرنک بنتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کی میری عبادت کیسی ہے یہ اب آپ کو مجھے پتہ چلے گا. اگر ہم نے عقیدے کو بہترین طریقے سے سمجھ لیا ہے, اللہ کی توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات کے ہم قائل ہو گئے ہیں, تو پھر ہماری نمازوں میں ضرور ہی رنگ پڑے گا. ٹھیک ہے, اب ایک دن میں پانچ نمازیں ذرا سا گنے تو صحیح. ایک دن میں پانچ نمازیں پھر کافی نہیں تھی؟ نہیں. اب جو پانچ نمازیں اور اس سے مسائل ہم نے پڑھے ہیں نا, اسی میں ہلکا پھلکا سا سفر کی نماز کیونکہ فرض ہے. اب ذرا سا آگے چلیے ترتیب کے ساتھ. آج کی جو ہماری شیٹ ہے اس میں پہلی نماز ہے نماز جمعہ, اس کو ذرا سا سمجھتے ہیں. اسی میں پھر انشاءاللہ دوسری چیزوں کو بھی ہم لیں گے, اور وہ کیا ہے کہ آپ کو بعد میں احساس ہونے لگ جائے گا کہ نماز 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 اور نماز. کیا مطلب کہ نماز ایک انسان کی زندگی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. دن رات میں جو فرض نمازیں تھیں وہ پانچ تھیں. اب آگے لکھیے فرض نمازوں میں سے ایک اور فرض, ابھی میں سنت نفل نمازوں پہ آپ کو نہیں لے کے جا رہی, فرض نمازوں میں سے ایک اور نماز ہے جس کو نماز جمعہ کہتے ہیں. نماز جمعہ جیسے کہ نام سے ثابت ہو رہا ہے کہ جمعے کو پڑھی جاتی ہے, اور جو مسلمان ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جمعے کے دن کی ظہر کی نماز کو صلاۃ الجمعہ کہتے ہیں. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز فرض ہوگی وہ پہلے سے زیادہ ہوگی, لیکن جمعے کے دن فرض نماز جو عام دنوں میں چار رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے اس کو دو رکعتوں میں ڈھال کر پلس دو رکعت کی جگہ پہ خطبہ ڈال دیا جاتا ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جمعہ کیا ہے, جمعے کے دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ. شروع سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو بہت ہی اہم دن کیا ہے. اگر سورہ حدید میں جا کر آپ اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھنا چاہیں, پھر سورہ جمعہ بھی, تو جمعہ فرض ہے. کس کے اوپر جمعہ فرض ہے آپ اس میں رینڈم چیزیں لکھیں گے, آپ صرف ریمائنڈرز دینا چاہ رہی ہوں کہ جمعے کے دن کی فضیلت اور اس سے جو ہمیں لینا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ جمعہ سارے دنوں میں سے بہترین دن ہے. روایت نوٹ کیجئے, صحیح مسلم 1976 اور ترمذی 488 میں بھی ہے ابو ہریرہ سے روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دنوں میں سے بہتر دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ بہترین ہے, یعنی جمعہ کا دن سارے دنوں میں سے بہترین ہے. اسی دن آدم پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے और उसी दिन वहाँ से निकाले गए, और क़यामत भी जुमे के दिन आएगी। कितनी खूबसूरत घड़ियाँ होती हैं जुमे की। और याद रखिए कि नमाज़ जुमा वाजिब है। इसकी दलील सूरह जुमा आयत 9 और मुस्लिम 485। फ़र्ज़ है, नबी सल्लम ने कहा, आप अपने मिंबर की लकड़ियों पर खड़े थे और फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाज आएं, नहीं तो अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में से हो जाएंगे। सही मुस्लिम 2002। तो क्या पता चला कि जुमा फ़र्ज़ है? क्वेश्चन क्वेश्चन दिल में लिख लें, बस लाइन लिखेंगे, सवाल खुद ही उसमें आ जाएगा कि जुमा वाजिब है, इसकी शरायत क्या हैं? पांच शरायत हैं। नंबर एक, मर्द, औरत पे वाजिब नहीं है, पड़ेगी तो सवाब होगा। नंबर दो, बालिग, नाबालिग पे फ़र्ज़ नहीं है, पड़ेगा तो सवाब होगा। ये बातें तो, पड़ेगा तो सवाब होगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। यानी मेरा तक कि नोट्स कम लें, समझें ज़्यादा। तीसरा, आज़ाद, ग़ुलाम पर वाजिब नहीं, पढ़ेगा तो अजर होगा। नंबर फोर्थ, सेहतमंद होना, बीमार पर वाजिब नहीं, पढ़ेगा तो सवाब होगा। और पांचवा शख्स, मुकीम, यानी जैसे आप और मैं अपने घरों में रह रहे हैं, अगर मुसाफिर पे फ़र्ज़ नहीं, पढ़ेगा तो सवाब होगा। क्या पता चला? नहीं पढ़ेगा तो गुनाह नहीं होगा। ठीक है, क्या औरतों पे भी फ़र्ज़ है? नहीं, औरत, ग़ुलाम, बच्चा और मरीज़, चार पर जुमा वाजिब नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत है 1067। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जब कोई मस्जिद में जाता है तो फिर क्या वो खुतबा भी ज़रूर सुने? बिल्कुल, खुतबा ज़रूर सुनेगा, क्योंकि खुतबे के बग़ैर चार वाली रकात जो दो थी, तो दो तो हुई नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईद के दिन जुमा आ जाए तो क्या होगा? तो फिर दो ईदें इकट्ठी हो गई, चाहे तो दोनों पढ़ ले, चाहे तो एक पढ़े। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेकिन हम तो जुमा अदा करेंगे। ये अबू दाऊद की रिवायत है 1073। क्या पता चला कि नमाजें मस्जिदों में तो होंगी, लेकिन उस दिन रिलैक्सेशन है कि जिन्होंने सुबह ईद की नमाज़ अगर अदा कर ली तो, अगर वो नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन मैं मान ही नहीं सकती कि जिसको आदत हो आम दिनों में जुमा पढ़ने की, वो ईद के दिन छोड़ दे, जबकि वैसे ही बहुत बंदा फारिग होता है और काम और जॉब सारी ख़त्म हो चुकी होती हैं उस वक़्त है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जुमे के दिन की फजर में भी अल्लाह के नबी सूरह सजदा और सूरह दाहर पढ़ा करते थे। ये बुखारी की रिवायत है 891। आपने, मैंने जुमा चूँकि पढ़ाना नहीं है, पढ़ना होता है, इसलिए वो सारे मसाइल और वो सारी मालूमात स्किप करते हुए कि जो जुमा पढ़ाने वाले के लिए, हालांकि वो अपनी जगह एक नॉलेज है, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट किसी अपने एडवांस लेवल में उसको समझेंगे। लेकिन जुमे के दिन और क्या करें? सूरत कहफ पढ़ना सभी पढ़ते हैं, दो जुमों के बीच में रोशनी है। फिर इसी तरह से आपके मेरे मतलब की जो चीज़ है, जो मैंने बहुत कसरत से देखी है, ख़वातीन जब जुमे की नमाज़ पढ़ने जाती हैं, खुतबा सुनने से ज़्यादा बातें, फ़ोन पे मैसेजेस। देखिए, जुमे की नमाज़ में औरत शरीक होगी, उसको अजर मिलेगा, लेकिन जुमे के खुतबे के दौरान जिस शख्स ने किसी को ये कहा ना, श ऐसे श चुप कर जाओ, मसे इसरे इशारे से फरमाया, उसने लग़व बात की। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि चुप कराने वाले की बात अगर लग़व है, तो बोलने वाला कितनी बेहुदा बात करेगा ना फिर। ठीक है, अब जाते हैं, सेलफोन्स बंद, मस्जिद के प्रेइंग रूम में ऐसे जाइए कि जैसे किसी मिलियनेरियन के ड्राइंग रूम में जाते हैं। बिलीव मी, मैं अक्सर माओं को भी कहती हूँ, अपने बच्चों को ज़रा सा शऊर शुरू हो जाए, 5-6 साल की उम्र के होने लगें, तो उनको बताएं ये अल्लाह का घर है। हम किसी के भी घर जाते हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं? और अगर बच्चे वहाँ नाच रहे, कूद रहे और सफ़ों में भाग रहे और जाए नमाज बिखर रहे हैं, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल से मस्जिद और जुमे की तकद्दस और तकदीस ख़त्म हो जाएगी। फिर जुमे के दिन कुछ और भी इबादात में से अल्लाह के नबी की एक रिवायत नोट कीजिए कि जुमे के दिन कसरत से नेक अमाल कीजिए। मैं जब ये बात पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी फिर गुनाह तो नहीं करने चाहिए जुमे को। तो चलिए, हम इस जुमे से इंशाल्लाह जो अब आ जाएगा 1-2 दिन बाद, हम ये सोचते हैं कि हमने कोई गुनाह का काम ख़ास तौर पर जुमे को नहीं करना। ठीक है, और इसकी दलील तिर्मिज़ी 488 और 491 है। आम दिनों में भी रुकना चाहिए, लेकिन खैर के काम जो दिन अच्छा होता है उस दिन अगर शर्क में बदल जाए तो गुनाह भी ज़्यादा है। जैसे हर जगह ही गुनाह है, लेकिन हरम में जाकर कोई गुनाह करेगा तो ज़्यादा है। फिर इसी तरह जुमे के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, सूरत अल अहज़ाब 56 में भी है, और हदीस की बहुत सारी किताबों में से एक का बस नाम लिख लेते हैं, और वो है निसाई 1375। दुरूद पढ़िए। कितना दुरूद पढ़ें? पूरा पढ़ें? पूरा पढ़िए। नहीं पढ़ सकते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अब आप कहेंगे कितनी दफ़ा पढ़ें, कोई तस्बीह पे, दानों पे? मैं कहती हूँ एक दफ़ा नबी की कोई एक कुर्बानी जहन में लाएं, फिर कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। सीरत पढ़ी हुई है ना, एक एक एंगल पे देखे। और मैं जब पढ़ती हूँ ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी दीन के लिए कुर्बानियाँ, हिजरतें, और जो आपकी एक अनथक किस्म की मेहनत थी, एक स्ट्रगल थी, वो याद आती है। तो मुझे लगता है कि दुरूद इज़ एप्रिसिएशन कि अल्लाह के नबी, हम आपको कुछ और तो दे नहीं सकते, लेकिन हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। फिर इसी तरह जुमे के दिन साफ़ लिबास भी पहनिए, क्योंकि ये मुसलमानों की ईद का दिन होता है। मस्जिद में जाएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, तो कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये अबू दाऊद 1086 है। गुसल करना, जैसे पीछे भी बात हुई थी, जुमे के लिए गुसल करना चाहिए, बुखारी 877। हिकमत क्या है? देखिए, जुमों में अक्सर मस्जिदें भर जाती हैं, ठीक है। अब जब लोग इतनी करीब करीब होंगे, स्मेल आएगी ना। फिर दूसरी बात आप देखिए कि फरिश्ते भी होते हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। तो लिहाजा वाजिब है हर बालिग पर जुमे के दिन गुसल। सही मुस्लिम लिख लीजिए 1957 इसकी दलील, एक ही काफ़ी आपके लिए। फिर जुमे के दिन खुशबू का अहतमाम करें। कौन? मर्द करेंगे खुली खुशबू। आम तौर पे औरतें हैं, तो घर में रहते हुए, अगर सिर्फ घर में, तो अपने आप को एक अच्छी फीलिंग देने के लिए आप इत्र लगा रहे हैं, कोई भी ऐसा ऑयल लगा रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन जुमे के दिन खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। बुखारी 880 और मुस्लिम 1957। फिर मिसवाक आम तौर पे भी सवाब है, लेकिन जुमे के दिन ख़ास तौर पे मिसवाक करनी चाहिए, और ज़ाहरी बात बाय डिफ़ॉल्ट ये एक अच्छा काम होगा। फिर जुमे के लिए जल्दी जाना चाहिए। बुखारी 881। कारोबार करते हैं आपके हस्बैंड या जॉब करते हैं? कितनी सिस्टर्स हैं जिनके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं और बाकियों के जॉब करते हैं? दोनों के लिए सेम हुक्म है, दोनों के लिए सेम हुक्म है। खुतबा शुरू होने से पहले और जुमे के फ़र्ज़ अदा होने के बीच में, आधा घंटा है, पौना घंटा है, या एक घंटा है, इस दौरान जो खरीदो फरोख्त होगी वो अलाउड नहीं होगी। देखिए, आप पीछे कुरान में पढ़ा है ना साबु सब्त का किस्सा, हफ्ते वाले दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी। उनके लिए कितना था पूरा हफ्ता? 24 आवर्स। उम्मत मुस्लिमा के लिए 24 आवर्स स्क्वीज डाउन करके ऑलमोस्ट 1 घंटा बन गया। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी काम कर सकते हैं, बल्कि जुमे की नमाज के बाद अगर शॉप खोलते हैं या बिजनेस करते हैं या टैक्सी चलाते थे, तो अल्लाह की तरफ से ज़्यादा बरकत है। हमारे असलाफ जुमे के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी दुकानें ज़रूर खोलते थे, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कि जब जुमा पूरा हो जाए, वाइज़ा कुदियत सलातु फन तशरू फिल अर्दी, जब नमाज पूरी हो जाए तो फिर ज़मीन में बिखरो। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और आपका मेरा काम है। ये आप ये नहीं कह सकते मैं कैसे बोलूँ, मेरे हस्बैंड है नहीं। देखिए, ये चीज़ें जुमे के दिन नहीं डिस्कस होंगी, ये 2 4 6 दिन पहले से ही जहन साजी बनी होगी। उस वक्त कोई कमाई ऐसी चीज़ जो है वो अलाउड नहीं है। फिर आप देखिए कि जुमे के लिए पसंदीदा क्या है कि पैदल चले, पैदल चल के जाएं। अगर बहुत मुशक्क़त नहीं हो रही तो पैदल जाना चाहिए। अबू दाऊद 345 और तिरमिज़ी 496 है। जामे मस्जिद में जाने की कोशिश करें। बड़ी मस्जिद में जाने से फ़ायदा क्या होगा? इतने मुसलमानों को देखकर दिल खुश होगा और अच्छा लगेगा। फिर इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी हैं, किसी को किसी की जगह से नहीं उठाना चाहिए। आप जाती हैं ना, कोई मुनासिब सी जगह देखकर बैठ जाइएगा। मुस्लिम की रिवायत है 5 6 8 8, दो लोग बैठे हुए थे, बीच में जाकर तीसरा ना बैठे। इब्ने माजा 1115। फिर इसी तरह से जुमे के दिन नमाज से पहले आप चले गए, तो आप कहते हैं कि आए हम वहाँ बैठकर दर्स कर लेते हैं। नहीं कर सकते। जुमे के दिन मस्जिद में नमाज से पहले हलका बनाकर दर्स के इल्म के लिए नहीं बैठना चाहिए, और इसकी दलील इब्ने माजा में भी है, 1133 औरों में भी है। पूरी कोशिश कीजिए पहली सफ में बैठने की हिरस करें, बच्चों को सिखाएं, मर्दों को सिखाएं ये बात, और ये दलील इसकी अबू दाऊद 664। लफ बातों और लफ कामों से इज्तनाब करें, अगरचे कम ही है। पहले नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह लफ बातें, باتیں بھی نہیں زیادہ کرتے، جمعے کے دن اور خاص طور پہ جمعے کی نماز کے لیے گئے ہوئے کم سے کم کیجئے. بخاری 934 اور مسلم 1965. چلیے جمعہ پڑھ لیا، اب کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بارے میں بہت سارے رائے ہیں، جس میں سے کوئی کہتا ہے کہ جمعے کی اذان اور اقامت کے بیچ میں، کوئی کہتا ہے ظہر اور عصر کے بیچ میں ہے. آپ جس وقت بھی دعا کریں اللہ سے کہیں کہ اللہ تیرے نبی نے کہا کہ یہ گھڑی ایک ہوتی ہے، وہ جب بھی یہ گھڑی ہے تو میری یہ دعا قبول کر لے. دیکھیے قبول تو اللہ نے کرنی ہے نا. تو اب نیکسٹ ویک سے جمعے کا اہتمام زیادہ ہوگا. جمعے کو خاص کھانے بھی پکایا کریں. آپ کہیں گے ہم روز ہی پکاتے ہیں، تو پھر بدھ جمعرات کو نہ پکائیں تاکہ جب جمعے کو پکائیں تو اچھا لگے. گھر میں فیلنگ آنی چاہیے. دیکھیں موسٹلی گھروں میں ونس آ ویک بیڈ شیٹس تو چینج ہوتی ہیں نا، ٹاولز بھی چینج ہوتے ہیں. آج سے نیت کیجیے، یہ آپ کا میرا سیکھنے کا مقصد ہے یہ، کہ جمعے کو آپ بالکل ایسے رکھیں کسی مہمان کے آنے کا دن، جمعے کو رکھی عید کا دن، اور جمعے کو اسپیشل ڈے بنائیے. یہ چیزیں نا غیر محسوس طریقے سے پھر ہمارے بچوں کو اس دن کی اہمیت دلائیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی ہو گئی. نمازوں میں سے ایک اور نماز، عید کی نماز، کمال ہو گئی. عید کا دن بھی نماز کا دن ہوتا ہے جی، عید کے دن بھی نماز پڑھیں ماشاءاللہ، اس دن تو فن ہے. یہاں سے دین کا مزاج سمجھیے کہ عید کے دن عام نمازوں کے علاوہ ایک اسپیشل نماز بھی ہے، جو عید کی نماز ہے، جو بچپن سے سنتے ہیں. عیدین کہتے ہیں اس کو، فطر اور دوحا. بائے تو عیدیں کتنی ہیں پھر اسلام میں؟ پکی بات ہے کچھ اور بھی بناتے ہیں. یہ دلیل ہے آپ کے پاس، آپ پورا اسلام اے ٹو زی پڑھیں گے، آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تیسری عید کا نام نہیں ملے گا. اب ہمارے انڈیا پاکستان والے منا لیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن عیدیں دو ہیں. سب سے پہلی عید کب ہوئی تھی آپ کو پتا؟ 2 ہجری میں. 13 سال مکہ کے عید کی نماز نہیں ہوئی، عید کا کوئی کانسیپٹ اس طرح واضح نہیں تھا. لیکن جب مسلم اسٹیٹ بن گئی تو اس وقت پھر اللہ کے نبی نے پہلی دفعہ اکٹھے کر کے عید کی نماز پڑھائی. کیا عورتیں بھی عید کی نماز پڑھیں گی؟ بالکل پڑھیں گی، ہر ایک پر فرض ہے. یعنی عید کی نماز عورتوں کے لیے کیسی ہے، حدیث سنیے کیونکہ یہ میرے آپ کے کام کی چیز ہے. بخاری 981 ہے، ام عطیہ سے یہ روایت پہنچتی ہے، کہتی ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردے والیوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں. کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھیں میں سوچتی ہوں اس کی حکمت کیا. گھر میں ہر ایک کو تو نہیں پتا ہوتا نا کون کس کیفیت میں. عورتیں بھی جا کر اس عید کی دن کی خوشی کو منائیں. کتنے لوگ ہیں جو بچپن سے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی عید کی نماز کے لیے جاتے رہے؟ سچ بتائیں، وہ عید جس میں فجر کی فوراً بعد اٹھ کے نماز کے لیے جائیں اور جس میں عید کی نماز کا کانسیپٹ نہ ہو، وہ کوئی ایک چیز ہے. آج بھی یعنی اس عمر میں پہنچنے پہ جس دن فلائٹ صبح ہوتی ہے، اکثر ٹریولنگ جو رہتی ہے، تو جس دن صبح صبح اٹھ کے گھر سے نکلنا ہے تو مجھے ظاہر ہے کہ اٹھ کے ویسی روٹین تو الحمدللہ کم و بیش یہی ہوتی ہے، لیکن صبح اٹھنا، شاور لینا، نکلنا، تیاری کرنی ہے، جانا ہے، تو مجھے وہ بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں کہ آج عید کا دن ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کو رکھیں. مجھے ان سسٹرز پہ بڑا ہی رحم آتا ہے بیچاریوں پہ، کہتی کبھی پڑھی نہیں تھی، اب پڑھنی شروع ہوئی ہے. 90% لوگ یہی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عورتوں کو نہیں لے کر جاتے تھے. تو بھی عورتوں کی عید کیا ہے؟ سارا دن کچن میں، سارا دن سوئیاں، شیر خورمے، اور ساری رات وہ عورتیں بیچاریاں اگلے دن کی تیاری کرتی تھیں اور صبح میں سوتی اور مرد جا کے نماز پڑھاتے تھے. عورتوں کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس سے آپ کو عید عید لگے گی. اتنے لوگوں کو دیکھیں گے تو اچھا تو لگے گا نا. اور عید کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں. بخاری 989 ہے. اچھا عید کے دن نفل تو خوب پڑھنے چاہیے نا عیدگاہ میں. اب یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی اپنے لفظوں میں، آپ کو صحابہ کے دین کو سمجھنے کا مزاج ملے گا. حکم پہلے لکھ لیجئے، جو عید کی نماز کے لیے آپ جاتے ہیں نا، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھنے. یہ روایت فتح الباری میں بھی موجود ہے، 159 جلد 3 ہے، اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، 1293. एक सहाबी ने किसी को जाकर ईदगाह, मस्जिद में नहीं जाते थे, लोग खुली जगहों पे जाते थे, ये एक अलग इशू है। एक सहाबी ने किसी को ईद की नमाज से पहले दो नफिल पढ़ते देखा। जी,
इसमें वो होता है या फिर मस्जिद भी नहीं है अगर
मस्जिद
वो
में जाते ही नहीं है ना, ये ईदगाह खुली में होती है, लेकिन अब अगर जाएंगे आप ईद मस्जिद में तो भी नहीं पढ़ेंगे। ईद की नमाज से पहले कोई नफिल नहीं। किसी सहाबी ने दूसरे को पढ़ते देखा, उसने कहा कि तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, ये नफिल तो तुम्हें जहन्नुम में ले जाएंगे। तो वो जो पढ़ रहा था कहने लगा, नफिल मुझे जहन्नुम में ले जाएंगे, मुराद ये कि मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ? कहने लगे, नफिल नहीं, सुन्नत के खिलाफ काम करना तुझे जहन्नुम में ले जाएगा। साहब इसमें बहुत सख्त है, ठीक है? तो ईद से पहले या ईद के बाद नफिल नहीं है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जब आप ईद की नमाज के लिए जाएं, तो ये ना हो कि नेकी बर्बाद गुना लाजिम, छन छन करते कपड़े और सलमे सितारे, और फिर बगैर किसी हिजाब के, किसी आड़ के, आप मर्दों में से गुजर के जब ऐसी जगहों से गुजरते हैं तो ये दुरुस्त तरीका नहीं होगा। औरत जेबो जीनत करे, अच्छे कपड़े पहने, कितना आसान है कि आप पहनिए, जरूर पहनिए, लेकिन दूसरों को मत दिखाइए। और अब आप कहते हैं फिर हम पहनते ही नहीं, ये भी एक एक्सट्रीम है। तो बहरहाल यह है कि ईद की नमाज का एहतमाम करना चाहिए, ये खुशी का दिन होता है। अब ईद की जो बाकी चीज़ें हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा आपको पता है, सोइयाँ खाना फ़र्ज़ है, शीर खोरमा सुन्नत मौकदा होगा नऊज़ुबिल्लाह, और क्या वाकई हो जाती है ईद नया जोड़ा ना पहने तो गुना तो नहीं होता, और रातों को जाकर चूड़ियाँ ना पहने और मेहंदियाँ ना लगवाएं तो क्या फिर भी होगा? देखिए ये कल्चरल बातें, कोई भी खुश होने में बुरी बात नहीं है जब तक के हदें ना टूटें। अब गैर मर्दों से जाके चूड़ियाँ पहनवाएंगे बेटियों को तो ठीक नहीं होगा ना, और बेपर्दगी और बेहयाई के नाम पे जो भी करेंगे वो ठीक नहीं होगा। तो बहरहाल छोटे बच्चों को भी ईद की नमाज़ के लिए ले जाएं, इहतमाम करें, खुशियों में ले जाएं, फिर तकबीरात पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में। इस वक्त इस पर ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ मैं हिंट्स दे रही हूँ आपको, क्योंकि अभी आगे आपने बहुत कुछ इंशाल्लाह और भी चीज़ों को पढ़ना है। अच्छा, जब ईद की नमाज़ के लिए जाते हैं तो एक ही रास्ते से जाना चाहिए कि बदल के? क्यों भला? मिलना मिलाना, शाबाश, जाते हुए कुछ लोगों से मिल लीजिए और दूसरे लोगों से आते हुए मिल लीजिए। अच्छा, जो केक आते हैं ईद के, वो फर्ज हैं, सुन्नत है? मिलने मिलाने वालों को केक देने चाहिए? देने चाहिए। अच्छा, ईदी का क्या हुक्म है भाई? ये तो लिफाफों में डाल के बच्चों को ईदी दी जाती है, ये सुन्नत है, फर्ज है कि नफिल है? ट्रेडिशन है। देखिए एक बात याद रखिए, रस्म नहीं बनानी चाहिए। हाँ, बच्चों को खुशी का एहसास हो। कई बच्चे सारा दिन दफ्तरियाँ गिनते रहते हैं, मेरे पास इतनी हो गए, मेरे इतने, और फिर बाद में लड़ते हैं माँ से, मेरी ईदी के पैसे किधर है ना? तो ये चीज़ें देखिए, जब हम अपने बच्चों को कुछ गलत चीज़ों से रोकेंगे तो फिर उनको उसके बदले में कुछ अच्छा करके भी दीजिए ना। ईद का गिफ्ट बच्चे को ज़रूर दें, वरना क्रिसमस के गिफ्ट के ऊपर वो इतराज़ करेंगे कि आप वो तो इतना इहतमाम करते हैं, हम क्यों नहीं करते? यानी जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी ना वो है। चलिए ये बताएं कि ईद उल फितर और ईद उल अदहा में एक बुनियादी फ़र्क है सुबह नमाज से मुतल्लिक, वो क्या है? जी, फितराना, शाबाश, उसकी भी बात आती है जी। यानी ईद उल फितर की नमाज से पहले कुछ ना कुछ खाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेवैयाँ, खजूर खाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीठी चीज़ खानी चाहिए, लेकिन ईद उल अदहा की नमाज से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। वजह सोचिए ज़रा। देखिए ईद उल फितर की नमाज से पहले तो 30 दिन पहले आपने उस वक़्त कुछ नहीं खाया, बात समझ गए? फजर से लेकर ईद की नमाज के जो बीच का वक्त है, हमने पूरे रमजान उस वक्त कुछ नहीं खाया, तो आज उसके तोहफे में खाओ। और इसके ऑपोजिट ईद उल अदहा में अब बाद में बहुत कुछ खाना है, तब रुक जाओ। देखिए क्या खूबसूरत बैलेंस है दीन का। मैं ईद के टॉपिक पे गौर कर रही थी कि इस वेरी मच क्लोज टू अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फितरा, और एक छोटी सी रिजेम्बलेंस भी ले लीजिए, मोमिन की जिंदगी रमज़ान और ईद का कॉम्बिनेशन है। ये ज़िंदगी, ये दुनिया जो आप और मैं गुजार रहे हैं, इट शुड बी लाइक रमज़ान, लअल्लकुम तत्तकून। बच्चों बचाओ, हलाल भी है तो फिर भी ज़रा सब्र करो, होश करो। लेकिन मोमिन की आखरत होगी कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ़तुम फ़िलयामिल खालिया। ईद का दिन मोमिन की आखरत है और रमज़ान मोमिन की ये दुनिया है, काफिर का मामला ऑपोजिट है। हमें हर साल ईद और रमज़ान के दौरान इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कैसे दिले दे रहे हैं। और फिर याद रखिए, जब आपका मेरा किबला सीधा हो गया ना, तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह सीधी होंगी। ये बताइए कि तकबीरात क्या होती हैं, ज़रा सब मिलके पढ़ें। क्या ये फीलिंग नहीं आने लग गई कि आज भी ईद है? कैसे दिल के तारों को छूता है। और कभी अल्लाह करे ये तकबीरात हमारे घरों में हर वक्त हर रोज चले। ये है ना कि मुझे है हुक्मे अज़ां, अपने दिल को इन चीज़ों पे रखें। हमारा माहौल अब घरों का दिन ब दिन बोरिंग और इंडिविजुअलिज्म पे आ गया है। इसमें इज्तमाईत है। ये नहीं कहा कि आप अपने कमरे में तकबीर पढ़ लें, आप अपने में इज्तमाई तकबीरें पढ़ें। ईमान वालों को हर जगह एक, मुझे लगता है, गेट टुगेदर, फैमिली गेट अप, बॉन्डिंग का एहसास दिलाया गया। और सब मिलके गाड़ी में बैठे तकबीरात पढ़ रहे हैं। हज या उमरे पे गए तो लबैक अल्लाहुम्मा लबैक ला शरीक लक लबैक। इससे ना अंदर वो दिल के अंदर नेकियों के जज्बे आते हैं। तो सारी बात में से अपने लिए अमल की बात क्या निकालें, अपने बच्चों को भी ख़ास तौर पे इन चीज़ों की रूह जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं, हमसायों से खुशी करना और दूसरों को भी करना, लेकिन बहरहाल यह कि ईद की नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश और ख्वाहिश रखनी है। अच्छा, फिर ईद के नाम पे ईद शोज़ हो सकते हैं, टॉक शोज़, फ़न, म्यूज़िक। कई लोग, बिलीव मी, सारे महीने की रमज़ान की इबादत सिर्फ ईद के शोज़ की नज़र कर देते हैं और ईद की पार्टीज़ की नज़र करते हैं। एक जगह बड़ी यानी तकलीफ़ दह चीज़ थी कि जैसे दौरा कुरान होता ही आप सभी जानते हैं, तो दुआ वाले दिन और भी बहुत सारे लोग आते हैं ना, लेकिन एक जगह ऐसा दौरा कुरान था कि जब दुआ हो गई और बाद में क्या पता चला कोई सिस्टर आई और अपने ईद के किसी शो जो इंतहाई बेहुदा था उसके सारे फ्लायर बांट के चली गई। यानी आप ये भी सोचिए कि जब रमज़ान तकवे वाला होगा ना, तो उसके बाद फिर ईद वाले दिन तो कुछ बंदा ऐसे गलत काम नहीं कर सकता। जी आप कहिए। देखिए, ऑप्शनल है। आप इस मुल्क में रहते हैं, आप कुर्बानी कर ही नहीं रहे, फिर क्या करेंगे? आपने खुद किया हो गोश्त, इनका सवाल समझ गए कि खाना है, उसके बाद तो सिर्फ कुर्बानी के गोश्त से खाना है। दो तीन इसमें इश्यूज बन जाते हैं बाज़ दफ़ा। एक होता है आइडियल सिचुएशन, इट्स गुड कुर्बानी। वैसे भी आप कहते हैं कि ईद की नमाज़ कितनी सुबह पढ़ते हैं, बस सनराइज के फौरन बाद नमाज, और पहले से कसाब तैयार होते हैं पाकिस्तान में, इवन सऊदी अरब में, फौरन गोश्त कटा, जल्दी जाए, कलेजी बनाई, खा ली, इट्स गुड। लेकिन अब आप और मैं अमेरिका में, आपने यहाँ नहीं की, है नहीं तमाम, पाकिस्तान में बोला अपने रिश्तेदारों को कि वो कर दें, और पाकिस्तान में ईद एक दिन बात हुई बिलफर्ज, अब आप वो गोश्त कहाँ से लाएं? या आप कहते यहाँ यहाँ सारा दिन कहीं से गोश्त नहीं आया। तो ये सारी चीज़ों को हमेशा बहुत लिटरल लेना चाहिए ना। ये फिकी इश्यूज हैं ना, इख्तलाफी इश्यूज हैं, बेटर और बेस्ट हो सकता है। मिल जाए एहतमाम करें, खा लीजिए, ना मिले तो फिर कुछ भी खा लेंगे। जी शाबाश। जी मैं इसकी तरफ आने वाली थी कि और क्या फ़र्क है। ये आप सबने सुना हुआ है ना, कुर्बानी करने से पहले बाल और नाखूनी, तो सारी थ्रेडिंग्स किधर गई, वैक्सिंग्स किधर गई ईद की तैयारी की? देखिए अल्लाह यही चाहता है कि कुछ मर्जियां तो छोड़ो। जी जी ईद उल अधा में अय्याम तशरीक, ईद प्लस अगले 3 दिन, टोटल 4 डेज होते हैं, उसमें पढ़नी चाहिए।